हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंशी के प्रेग्नेंट होने के बाद सुनकर विधिक को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर आंशी को वापस अमन के पास भेजने का डिसीजन लिया। हालांकि उसके इस डिसीजन से आंशी को हैरानी तो बहुत हुई, लेकिन साथ ही विधिक के चेहरे के एक्सप्रेशंस और उसकी आंखों का दर्द साफ बयां कर रहे थे कि इस बार वो किसी तरह की चाल नहीं चल रहा था। आंशी ने विधिक पर यकीन कर लिया था, जो उसे ये बताने के लिए आया था। विधिक एक आखिरी बार आंशी के गले लगे हुए था और उसे अपने दिल की बात बता रहा था। बात करते हुए विधिक आंशी से अलग हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, जानता हूँ बटरफ्लाई, मैंने अब तक जो किया उसके लिए सॉरी शब्द बहुत छोटा होगा, पर यकीन मानो तुम्हारे प्यार के आगे मैं पागल सा हो जाता हूँ, कुछ दिखाई नहीं देता। मैं सृष्टि, हैरी और प्रिंस को नहीं मारना चाहता था। उन्हें आराम से लंदन पहुंचाकर हमेशा तुम्हें अपने करीब रखने का सोचा था, लेकिन उन्हें सच का पता चल गया था। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। विधिक अपने किए पर अफसोस जता रहा था। अब उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है विधिक, वो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मारते और खुद से आकर अपनी सच्चाई बताते तो शायद मुझे इतना डर नहीं लगता तुमसे, और मैं तुम्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेती, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारे प्यार में पागल थी, आंशी ने जवाब दिया। पूरी बात सुनने के बाद विधिक के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। वो उसी लहजे में बोला, बटरफ्लाई था और है, मैं फ़र्क होता है। तुम्हें मुझसे प्यार था और मुझे तुमसे अब भी है। कभी सोचा नहीं था कि मैं प्यार में इतना दरिया दिल हो जाऊंगा कि इतनी आसानी से अपना प्यार खुशी खुशी जाने दूंगा, पर बुआ ने कहा कि अब मैं अपनी बटरफ्लाई को आज़ाद कर दूं। आंशी और विधिक देर रात तक बैठकर बातें करते रहे। रात के लगभग एक बजे के करीब विधिक ने देखा आंशी बैठे बैठे ही सो गई थी। उसे इस तरह देखकर विधिक के फेस पर हल्की स्माइल थी। विधिक ने आंशी को अच्छे से लेटाया और फिर उसे देखते हुए अपने मन में कहा, दिल अभी भी नहीं मान रहा अपने प्यार को खुद से जुदा करने का, पर बुआ सच कहती है, तुम सच में लकी हो अमन कपूर, मेरी बटरफ्लाई तुमसे प्यार करती है। विधिक ने लाइट्स ऑफ की और कमरे से बाहर आ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, जैसे उसने अंदर ही अंदर खुद को आंशी से अलग करने के लिए तैयार कर लिया हो। विधिक नीचे ऑफिस रूम में पहुंचा। वो अमन को कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहा था। वहीं इंडिया में इस वक्त दोपहर के लगभग 4 बज रहे थे। अमन इस वक्त आर्टिस्टिक के ऑफिस में अपने केबिन में था। लावण्या उसके सामने बैठी थी। लावण्या ने अपना काम वापस संभाल लिया था। आंशी के जाने के बाद कहीं ना कहीं उसे उम्मीद हो गई थी कि अब वो वापस लौटकर नहीं आएगी और मजबूरन अमन को उसके पास आना ही होगा। लावण्या ने अमन को एक फाइल दिखाते हुए कहा, ये मिस्टर दास का प्रोजेक्ट है, उन्होंने एक मैरिज हॉल बनवाया है और उसका इंटीरियर हमें देखना है। मैंने डिज़ाइनर को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बोल दिया है, तुम्हें कोई स्पेशल चेंज करवाने हो तो बता देना। अमन ने बिना कुछ कहे लावण्या की बात पर हामी भरी। उसे इस तरह परेशान देखकर लावण्या ने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, ऐसा लग रहा है जैसे आंशी कल ही गई हो और तुम अभी तक उसके जाने के दर्द में डूबे हुए हो। उसे गए हुए एक महीना हो गया है, तुम्हें अब अपनी इस फीलिंग से बाहर निकलना होगा अमन। अमन ने लावण्या का हाथ अपने हाथ से अलग किया और सख्त आवाज में कहा, बी प्रोफेशनल लावण्या, बाकी तुम्हारे बार बार ये कहने से कि मैं आंशी को भूल जाऊं तो उससे मैं उसे भूलने वाला नहीं हूं। उसे मेरे पास वापस आना होगा और वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। अमन और लावण्या आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अमन के ऑफिस के लैंडलाइन पर एक कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से विधिक की सर्द आवाज आई, तुम ज्यादा तो मिस नहीं कर रहे थे ना मेरी बटरफ्लाई को। अमन विधिक की आवाज पहचान सकता था, ऊपर से उसने बटरफ्लाई नाम लिया था। अमन चौंकते हुए खड़ा हुआ। वो जल्दी से बोला, कहाँ हो तुम विधिक, और आंशी कहाँ है, वो ठीक तो है ना, तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। बोलते हुए अमन ने इशारे से विधिक का कॉल ट्रैक करने के लिए कहा। विधिक जानता था कि अमन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। वो हंसते हुए बोला, कॉल ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं। विधिक के इस तरह खुद की लोकेशन बताने पर अमन को बहुत हैरानी हुई। वो उसी लहजे में बोला, तुम मुझे खुद से अपनी लोकेशन बता रहे हो, अब क्या करने का प्लान है तुम्हारा विधिक राणा, मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ, अगर तुमने आंशी को किसी तरह की चोट पहुँचाई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विधिक का नाम लेने पर लावण्या समझ गई थी कि इस वक्त अमन विधिक से बात कर रहा था। लावण्या ने जल्दी से कॉल स्पीकर पर कर दिया था। वहीं अमन की बात सुनकर विधिक ने जवाब में कहा, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाने वाला और ना ही तुम्हें मुझ तक पहुंचने की जरूरत है, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है, दो दिन बाद तुम मुंबई बीच पर मुझसे मिलना, मैं बटरफ्लाई को वहां लेकर आ रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन अमन कपूर, तुम जीत गए, भले ही तुम बाकी चीज़ों में मुझे मात नहीं दे पाए हो, लेकिन तुमने मेरी सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन ली, मेरी बटरफ्लाई तुमसे प्यार करती है और देखो किस हद तक उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं खुद उसे तुम्हारे पास छोड़ने आ रहा हूँ। और हाँ, अकेले आना, मैं यहाँ किसी सीक्रेट एजेंट के पास उसकी वाइफ छोड़ने नहीं आ रहा हूँ, बस मेरी बटरफ्लाई की खुशी के लिए उसे उसके प्यार तक पहुँचा रहा हूँ। बेहतर होगा इसमें तुम अपना प्रोफेशनलिज्म बीच में ना लाओ, वरना क्या पता बार बार मेरा दिल बटरफ्लाई पर तरस खाने को ना करे। बोलते हुए विधिक के शब्द भारी होने लगे थे। वो किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने कॉल कट कर दिया। विधिक ने अभी अभी जो कहा था वो लावण्या ने भी सुना था। लावण्या अमन की तरफ देखकर सिर हिलाकर बोली, तुम सोच क्या रहे हो, हमें अभी एजेंसी ऑफिस चलकर सर को सब कुछ बताना होगा। लावण्या वहां से जाने को हुई तभी अमन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उसने कहा ना कि वो बस आंशी को छोड़ने के लिए आ रहा है, तुम्हारे किसी भी गलत स्टेप से आंशी की जान खतरे में आ सकती है और ये मैं नहीं होने दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो, वो विधिक राणा है, आंशी से पागलों की तरह प्यार करने वाला। क्या लगता है तुम्हें, वो तुम्हारे पास उसे छोड़ने के लिए आ रहा है? इसमें उसकी जरूर कोई ना कोई चाल छुपी होगी जो इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। बेवकूफों की तरह रिएक्ट मत करो, हमें सर को बात कर विधिक के खिलाफ प्लान करना होगा। इससे अच्छा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा जब विधिक राणा जैसा शख्स चलकर खुद हमारे पास आ रहा है, लावण्या गुस्से में चिल्लाकर बोली। अमन आंशी के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, वो विधिक से पहले भी बात कर चुका था और विधिक के शब्दों के पीछे दर्द को वो महसूस कर रहा था। अमन ने लावण्या की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, तुम मुझे पागल कहो या बेवकूफ, लेकिन मैं इस बार रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी। मतलब अब तुम उससे प्यार में इतना पागल हो गए हो कि एक टेररिस्ट एक इंटरनेशनल माफिया को इस तरह जाने दोगे? तुम कर लो ये, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सर के पास जा रही हूँ। लावण्या गुस्से में वहां से जाने लगी। मजबूरन अमन को भी उसके पीछे जाना ही पड़ा। आंशी के साथ साथ उन सबको भी इसी बात की हैरानी हो रही थी कि आखिर विधिक, जो आंशी से इतना प्यार करता है, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, वो इतनी आसानी से उसे अमन के पास छोड़ने क्यों आ रहा है।